رکو نمبر دو ہے 23 سے 32، اللہ کی بندگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف صاف کہہ دیا، یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. الزام، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں. دیکھیں ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں نبی پر. یقیناً اس شخص کو جنون ہے، ایک اور الزام لگا دیا. بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد کر. تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی. خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے. کیا بیتی ہوگی نوح کے دل پہ. جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا ہے میرے رب مجھے ببرکت اتارنا، اور تو ہی ہے بہتر اتارنے والوں میں. شروع میں ہم نے یہی دعائیں یاد کی، اس کو یاد کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا. یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی، خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو حضرت نوح کی دعا 26 میں رب بن سرنی بما کذبون، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے نا آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، کسی بھی سنیریو میں، تو میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما. اب حضرت نوح کا قصہ ہم نے کئی بار پڑھ لیا، آئیے ذرا اس میں سے کچھ نشانیاں لے لیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے صبر اور شکر پر اجر دیتے ہیں، لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے تکلیفوں اور بیماریوں پہ. رسولوں کا مبعوث ہونا بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا یہ اپنے وقت کے رسول یا نبی کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں کہ نہیں، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی، نشانیوں سے سبق لینا، رسولوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو نہیں جھٹلانا، ہر تکلیف میں رب سے مدد مانگنی ہے، ظلم نہیں کرنا اور اللہ کی تعریف بلند کرنی ہے. آگے دیکھیے رسپانس کیا ملا نوح علیہ السلام کو، رکوع نمبر 3 33 سے 50، حق کا انکار نہیں کرنا. وقال الملو من قومک، اور سردارہ نے قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے ہی پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابے داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو. آج بھی یہ کہتے ہیں نا، اور بناؤ اس کو مولوی اور پڑھاؤ تم اس کو قرآن، یہ ٹون ہے آج بھی. کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. کوئی نہیں، ابھی نہیں آنی آخرت، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے. یعنی دنیا مزے کر لو، بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا. وہ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کب دیکھا جائے گا؟ جب آگ میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے. یعنی یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، جس میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اس نے ملوث کر دیا ہے. پھر اور حضرت نوح پہ الزام، اور آپ دیکھیں ذرا، اگر آپ پہ اور میرے پہ اتنے الزام لگیں تو ہم اگلے دن چل کے آ جائیں گے ادھر، کہے کہ چلو بھاگ جاؤ، ہم نے نہیں پڑھانا، خود ہی کسی اور سے پڑھ لو. حضرت نوح کو دیوانہ، مجنو، جھوٹا، قذاب، کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ 950 سال تک اللہ کے راستے میں کھڑا ہے. اللہ ہمیں بھی استقامت دے. یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بختان باندھ لیا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں. نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر. جواب ملا، یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا. بس ظالموں کے لیے دوری ہو، इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा की, ना तो कोई उम्मत अपने वक्ते मुकर्रा से आगे बढ़ी और ना पीछे रही। फिर हमने लगातार कई रसूल भेजे, जब जब जिस उम्मत के पास इसका रसूल आया इसने झुठलाया, बस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया और इन्हें अफसाना बना दिया। इन लोगों को दूरी है जो ईमान कबूल नहीं करते। फिर हमने मूसा को और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलील के साथ भेजा फिरौन और उसके लश्करों की तरफ, बस उन्होंने तकब्बुर किया और वो थे ही सरकश लोग। कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो शख्सों पर ईमान लाए? नोट कीजिए, तकब्बुर में लोगों को अल्लाह के नबी भी हकीर लगे, हालांकि खुद इनकी कौम भी हमारे मातहत है। बस उन्होंने इन दोनों को झुटलाया और बिलाखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी दी कि लोग राह रास्त पर आ जाएं। हमने इब्ने मरियम और इनकी वालिदा को एक निशानी बनाया। किसकी तरफ इशारा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और मरियम की तरफ। और इन दोनों को बुलंद साफ करार वाली जारी पानी वाली जगह में पनाह दी, बैतुल्लाह में। ये जगह क्या सीखा? कि अल्लाह से मदद मांगना है, तकब्बुर नहीं करना, मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखना है, रसूलों के पैगाम की तकजीब नहीं करनी, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है, और अल्लाह ताला की निशानियों पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है जी रुकू नंबर 4, 51-77, हलाल रिस्क और अमले सालेह का ताल्लुक। या युहर रसुल कुलू मिनत तय्यिबात, ए पैगम्बरों, हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ, यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं ही तुम सबका रब हूँ, बस तुम मुझसे डरते रहो। फिर उन्होंने खुद ही अपने अमर यानी दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। हर गिरोह जो कुछ इसके पास है इस पर इतरा रहा है, बस आप भी इन्हें इनकी गफलत में ही कुछ मुद्दत पड़ा रहने दें। क्या ये यूं समझ बैठे हैं कि हम जो भी इनके माल और औलाद बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये तो समझते ही नहीं। आज हम भी लोगों को दुनिया में कुफर के साथ फलता फूलता देखते हैं तो इस गलत फहमी का शिकार होते हैं। अल्लाह कहते हैं, डोंट इम्प्रेस विद देम। यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और इनके दिल कब कब आते हैं कि वह अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही हैं जो इनकी तरफ दौड़ कर जाने वाले हैं। ये है किरदार साजी। नेकियां करके भी डरिए, कहाँ गुनाह करके ना डरना। हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते और हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है। इनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, बल्कि इनके दिल गफलत में हैं और इनके लिए इसके सिवा और भी आमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने इनके आसूदा हाल यानी दौलतमंद लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बिल बिलाने लगे, आज मत बिल बिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद ना किए जाओगे। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पड़ी जाती थी, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे, अकड़ते थे, ईंटते थे, अफसाना गोई करते इसे छोड़ देते थे। आप देखिए कि अल्लाह के कलाम के आगे जुबान खोलने वाला तबका अमूमन ऐसा ही होता है। अब अल्लाह को उन पर गुस्सा कितना आ रहा है। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही ना किया? बल्कि इनके पास जो आया इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आया था, या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि इसके मुनकर हो रहे हैं, या ये कहते हैं कि से जुनून है। यही बातें भी हजरत नूह पे भी हुई थी ना, हर नबी को इसी तरह से तकलीफें दी गई, बल्कि वो तो इनके पास हक लाया है। हाँ, इनमें से अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। अगर हक ही इनकी ख्वाहिशों का पैरो हो जाए तो जमीन आसमान और इनके दरमियान की हर चीज धरम बरम हो जाए। हक तो ये है कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुंचा दी, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। आप अपने बच्चे की हर बात माने, बड़ा खुश होगा आपसे, लेकिन वो इंसान का बच्चा नहीं रहेगा बाद में। यहाँ ये बात है, यानी लोग चाहते हैं हक हमारी मर्जी का हो जाए, हम उसको तोड़ें मोड़ें, लेगोस की तरह उसको तोड़ कर कुछ से कुछ बना दें और कुरान भी रहे और कुरान बस एक नाम की चीज़ बने। नहीं चाहिए। अंबिया कराम को कह दिया कि आपने इनकी खुशी के लिए दीन को नहीं बदलना, क्योंकि क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोजी रसां है। यकीनन आप इन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहे हैं। बेशक जो लोग आखरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना शामिल करे। और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफें दूर कर दें तो ये तो अपनी सरकशी में जमकर और बहकने लगे और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा। ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजजी इख्तियार की, यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया तो इसी वक्त फौरन मायूस हो गए। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि रिस्क हलाल से बात शुरू हुई थी तो इस पे 51 आयत पे एक रिवायत है बुखारी में 2262। अबू हुरैरा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हों। इस पर आपके सहाबा रजवानुल्लाह ने पूछा, आपने भी बकरियां चराई हैं? फरमाया, हाँ, कभी मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद किरात की तनख्वाह पर चराया करता था। आप में से कोई भी, खास तौर पे मर्दों का चूंकि ये काम है कमाना, सोचिए जरा, एक वक्त था कि आप सिर्फ दुनिया के पीछे थे, कमाना है तभी तो बच्चों को खिलाएंगे, फिर अल्लाह ने आपको दीन दिया और आपके लिए कितने रास्ते खोल दिए। याद रखिए, सच्चे दिल से इखलास और सुन्नत के मुताबिक दीन का काम करने वाले को अल्लाह कभी माल की तंगी नहीं देता। हमारे आइमाए कराम इसकी मिसाल थे, मुहद्दिसीन कराम इसकी मिसाल थे। शुरू में अल्लाह थोड़ा सा झटका दे भी दे, बाद में आसूदगी आती है। फिर इस तरह आयत 57 के बारे में आता है, हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, क्या ये वो लोग हैं जिनसे जिना, चोरी और शराब खुआरी होती है लेकिन इनके दिल में खौफ इलाही होता है? आपने फरमाया, नहीं, ऐ सिद्दीक की बेटी नहीं, बल्कि ये तो वो हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदक़े भी करते हैं, लेकिन कबूल ना होने के डर से डरते हैं। यही हैं जो नेकियों में सबकत करते हैं। ये तिरमिज़ी की रिवायत 3175। एक दफ़ा अपने गिरेबान में हम जाएंगे, अपनी नेकियों पे अकड़ते तो नहीं, फख्र तो नहीं, दिखावा तो नहीं, कोई रोक तो नहीं डाला वो अल्लाह पे कि अल्लाह मैं तो इतनी नेक हो गई हूँ, अल्लाह अब तो मैं इतना काम करती हूँ। उस जगह किसी की नहीं चलती। काम कीजिए और डरिए, अपनी नेकियां भूलिए और गुनाह कभी ना भूलिए। फिर सहाबा कराम पर अल्लाह तआला की हैबत और उनका अल्लाह पर यकीन कैसा था कि वो मवाहिद थे, अल्लाह तआला की शरई और फितरी आयात और निशानियों पर यकीन रखते थे, नेकी और खौफ इलाही का मजमुआ थे, नेकियों में सबकत करने वाले थे और इसके बावजूद नेकियां करके भी खौफ ज़दा रहते थे कि ऐसा ना हो कि कबूल ना हुई हो। दूर ना जाइए, आपका रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं फिक्र है? आपकी तरावी जो आपने 1 घंटा 1.25 घंटा लगाकर पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं? आपका ये दौरे कुरान सुनना सुनाना कबूल हो रहा है कि नहीं? फिक्र होनी चाहिए ना। तो आइए ज़रा सपना मुहासबा करते हैं, क्या मेरे दिल में भी सहाबा की तरह खशियत इलाही है? क्या मुझे भी अल्लाह की हर बात पर पूरा यकीन है? क्या मुझे शिर्क की बारीकियां मालूम है? क्या मैं अल्लाह के मना करदा कामों को नापसंद करती हूँ? क्या मैं नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करती हूँ? और अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम दिन ब दिन अपने आप को मजीद नेकियों में डाल लें। फिर इसी तरह से आयत 70 से 75 में सहाबा कराम और मुशरिकीन के अफाल का एक मवाजना देखिएगा, क्या फ़र्क था? आखिर क्यों इनको रदी अल्लाह अन्हु कहा गया? पहली बात है कि मुशरिक ना कुरान समझना चाहते थे ना गौर व फिक्र करते थे। इसके बरक्स सहाबा कराम कुरानी आयात पे गौर व फिक्र और तदब्बुर करते थे। दूसरा फ़र्क क्या था कि मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी की कदर ना की और सहाबा कराम दिन रात आपकी कदरदानी भी करते और आपकी पैरवी भी करते, आपका ख्याल भी रखते और आपसे मोहब्बत भी करते। फिर मुशरिकों ने अल्लाह की सरकशी में कोई कसर न उठाई, जबकि सहाबा किराम हर लम्हा अल्लाह की रजा हासिल करने की तगो दो में रहते थे। फिर आयत 76 पे भी एक रिवायत है बुखारी में 1007। इब्ने मसूद से रिवायत, अल्लाह के नबी ने जब कुफारे कुरैश की सरकशी देखी तो आपने बददुआ की कि अल्लाह 7 बरस का कहत इन पर भेज जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में भेजा था। चुनाच ऐसा कहत पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुर्दार तक खा लिए। भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ नज़र उठाई जाती तो धुएं की तरह मालूम होता है, इतनी नकाहत थी उनकी आंखों में अल्लाह ताला नबी के जाने से और उनकी बद दुआ से ये कुछ कर सकता है। तो आज आप देखिए कि अल्लाह के नबी की उम्मत उसको कितना डरने की ज़रूरत है। क्या सीखा, कौन से काम करने हैं, पाकीज़ा चीज़ें खानी है, नेक अमाल करना है, अल्लाह ताला से डरना है, दीन में फिरके नहीं बनाने और भलाइयों की तरफ दौड़ना है और अल्लाह के सामने आजजी इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आगे जी आयत 78 से 92 रुकू नंबर 5, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी है। वहुवल्लज़ी अंशा लकुम अस्सम, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल पैदा किए मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो, और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, और वही है जो जिंदा करता है और मारता भी है, रात और दिन के रद्दो बदल का मुख्तार भी वही है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं, बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जैसी अगले कहते चले आए कि क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे क्या फिर भी हम ज़रूर उठाए जाएंगे। हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले ही से ये वादा होता चला आया है, कुछ नहीं ये सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं। आज भी लोग कुरान की तालीम को इसी तरह हल्का जानते हैं। छोड़ो ना, आप क्या कुरान पढ़ना है, कुरान कुरान, आपकी इज्जत है इसमें, आपका सुकून है इसमें, इसमें आपका मुस्तकबिल है और आपके घर की बरकत है। आप कुरान से जुड़ते ना 5 साल के अंदर अंदर अल्लाह की रहमत से शौहर, बच्चे और घर वाले कम अज़ कम, बहुत भी नहीं तो कम अज़ उनका किबला दुरुस्त हो जाता है, और फिर जो बरकतें ज़िंदगी में आती हैं उसके तो क्या कहने। इसलिए कहा कि इस किताब से जुड़ जाओ, पूछिए तो सही कि ज़मीन और इसकी कुल चीज़ें किसकी हैं, बतलाओ अगर जानते हो, फौरन जवाब देंगे कि अल्लाह की। कह दीजिए फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते, दरियाफ्त कीजिए कि सातों आसमानों का और बहुत बाज़मत अर्श का रब कौन है, वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए फिर तुम डरते क्यों नहीं, यदि नाम की हद तक तो बहुत कहते हो अल्लाह अल्लाह, बात नहीं मानते तुम, रब को मानते हो रब की नहीं मानते। पूछिए कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर तुम जानते हो तो बतलाओ, यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो, हक ये है कि हमने हक पहुँचा दिया है और ये बेशक झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और ना इसके साथ कोई माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए लिए फिरता और हर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो असाफ ये बतलाते हैं इनसे अल्लाह पाक और बेनियाज है, वो गायब हाजिर का जानने वाला है, और जो शिर्क ये करते हैं इससे बालातर है। कितना रद्द है शिर्क का कुरान में, लेकिन तर्जमा नहीं आता तो हमें तो पता भी नहीं होता हम क्या पढ़ के आगे चले गए। तो क्या सीखा, अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री नहीं करनी बल्कि शुक्रगुजारी करनी है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इस बात पर यकीन रखना है। दिन रात की निशानियों में गौर व फिक्र करना है, ज़मीन व आसमान को अल्लाह की मलकियत समझना है और यकीन रखना है कि हर चीज़ पर कामिल इख्तदार अल्लाह ताला का है, सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। इसके बाद अब आगे स्ट्रॉन्ग सरकू है जिसको पढ़ने के बाद वाकई दिल पे बड़ा बोझ आता है। देखिएगा आयत 93 से 118 रुकू 6, बुराई को भलाई से दूर करना है। कुर रब्बी मा तुरी यन्नी मा युअदून, आप दुआ कीजिए कि मेरे परवरदिगार अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा इन्हें दिया जा रहा है तो रब मुझे इन जालिमों के गिरोह में ना करना, हम जो कुछ वादे इन्हें दे रहे हैं सब आपको दिखा देने पर यकीनन कादिर हैं। बुराई को इस तरीके से दूर कीजिए जो सरासर भलाई वाला हो। करेंगे लोग आपसे बुरा करें और आप उनसे अच्छा करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करे, है बड़ा मुश्किल। एक दफ़ा कर लें तो मज़ा बड़ा आएगा, उसके बाद चस्का लग जाएगा, फिर आपको पता क्या दिल करेगा लोग बुरा करें, और करो तुम भी कर लो और कर लो, आप भी कह लें जी, आप भी सुना लें, कुछ और कुछ रह तो नहीं गया, और आप सब्र कर करके उनको मुतासिर करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ ये बयान करते हैं हम इसे बखूबी वाकिफ़ हैं, और दुआ करें कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आएँ। अब मैं जिसको वसवसे आएँ शैतान बहकाए, वो तुम्हारा दुश्मन, वो तुम्हारे ख़िलाफ़, वो तुम पे तावीज़ कर रहा है, वो तुम्हें घोल के पिला रहा है, वो जादू कर रहा है, आपने बस इस दुआ को याद रख लें कि ऐ मेरे रब मुझे शैतान के वसवसों से बचा। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूँ। हरगिज़ नहीं ऐसा होगा, यानी ऐसा तो नहीं होगा। दुनिया वन वे है, बैक ट्रैक नहीं है, इसमें यू टर्न नहीं है। ये तो सिर्फ एक कॉल है जिसको ये कहने वाला है। इनके पसे पुश तो एक हिजाब है, इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। फैजा नफीखा फे सूर, बस जब के सूर फूंक दिया जाएगा, उस दिन ना तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे ना आपस की पूछगिछ। जो गिले शिकवे यहीं कर लें, उस दिन किसी ने आपकी बात नहीं सुननी। जिनकी तराजू का पल्ला भारी हो गया वो तो निजात वाले हो गए, और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया वो ये हैं कि जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया वो हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हुए। इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहां बदशकल बने हुए होंगे। सोचिए, काले खून, बकरे की भुनी हुई सिरी, कलूख। क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत ना की जाती थी, फिर भी तुम इन्हें झुठलाते रहे। कहेंगे, है परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, वाकई हम थे ही गुमराह। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से निजात दे, अगर अब भी हम ऐसा ही करें तो हम जालिम हैं। यानी अगर हम वही करें जो पहले करते थे तो हम जालिम हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिटकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो, क्योंकि दुनिया में तुम्हें मेरा कलाम अच्छा नहीं लगता था। मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही है कि हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके, तू हमें बख्श और हम पर रहम फरमा, तू सब रहम करने वालों से बड़ा मेहरबान है। लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यानी तुम्हें लफ्ज़ मौलवी मजाक लगता था, दीनदार तुम्हें कमजोर लगते थे, तुम मजाक करते थे दीनदारों का, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद ही भुला दी। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं लग रहा कि अल्लाह को ऐसे बंदों पे कितना गुस्सा आ रहा है जो उसके दीन वालों का मजाक उड़ाते थे, और तुम इनसे मजाक ही करते रहे। कोई मजाक उड़ाता है तो आप सब्र कीजिए, लेकिन दीन का मजाक उड़ाता है कोई, किसी को देखें तो दुआ कीजिए क्या कि अल्लाह इनको हिदायत दे। मैंने आज इन्हें इनके इस सब्र का बदला दे दिया है कि वो खातर ख्वाह अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला दरियाफ़ फरमाएगा, तुम जमीन में बरसों के एतबार की गिनती के किस कदर है, यानी कितने साल रहे हो? वो कहेंगे, एक दिन या एक दिन से भी कम। गिनती गिनने वालों से भी पूछ लीजिए, यानी अकाउंट्स चेक कर लीजिए जाकर, मुझे तो इतने ही लग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, वाकई अल्लाह ताला फरमाएगा, फिल वाक़े तुम वहाँ बहुत ही कम रहे हो, ऐ काश तुम इसे पहले ही से जान लेते। अफ हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबस, दो सवाल हैं इधर। क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा कर दिया, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही ना जाओगे? क्या हम ये दो सवालों के जवाब देने को तैयार हैं? अल्लाह ताला सच्चा बादशाह है, वो बहुत बुलंदी वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील इसके पास नहीं, बस इसका हिसाब तो इसके रब के ऊपर ही है, बेशक काफिर लोग निजात से महरूम हैं। और कहो कि मेरे रब, तू बख्श और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। आमीन तो कहिए। आप देखिए कि इधर एक दुआ है अल्लाह के नबी सल्लम की, आयत नंबर 94 पे देखिए, अबू दाऊद की रिवायत है 1552। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अल हतमी व आउज़ु बिका मिन अत तरद्दी व आउज़ु बिका मिन अल गरक़ी वल हरक़ी वल हरमी व आउज़ु बिका यतखब्बतनी यश्शैतान इंदल मौत व आउज़ु बिका अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरा व आउज़ु बिका अन अमूत लदीगा। ए अल्लाह, किसी मकान या दीवार के अपने ऊपर गिरने से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं ऊंचे मुकाम से गिर पड़ने से तेरी पनाह मांगता हूँ, डूबने से, जल जाने से और बहुत बूढ़ा हो जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मौत के वक्त मुझे शैतान उचक ले, इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरी राह में पीठ दिखाकर भागते हुए मारा जाऊँ, और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि किसी जहरीले जानवर के काटने से मेरी मौत आए। या वो दाऊद की रिवायत है 1552। तो आप देखिए कितना खूबसूरत तरीका है बुरी मौत से बचने का। इन दुआओं को याद कर लीजिए, नहीं भी तो देखकर भी पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला कबूल करेगा। फिर आप देखिए 96 का एक खूबसूरत असूल जो मेरे समेत आप सबको चाहिए कि अपने अमल में रखें, और वो क्या है कि बुराई का जवाब भलाई से दीजिए, दुश्मनों से निपटने का बेहतरीन तरीका है। कोई आपका दुश्मन आपके गुमान में तो ये तरीका कीजिए इख्तियार, अल्लाह आसानी कर देगा। फिर इसके बाद आयत मानो 1 पे हज़रत कतादा कहते हैं कि काफिर की इस आरज़ू में हमारे लिए बड़ा सबक है। क्या काफिर की आरज़ू थी? कि अल्लाह दुनिया में वापस भेज। काफिर दुनिया में अपने ख़ानदान और कबीले के पास जाने की आरज़ू नहीं करेगा, बल्कि अमल सालेह के लिए दुनिया में आने की आरज़ू करेगा। इसलिए ज़िंदगी के लम्हात को गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह कर लिए जाएँ, ताकि कल क़यामत को यह आरज़ू करने की ज़रूरत पेश ना आए। बात समझे? हमें तो अल्लाह ने इस्लाम भी दिया हुआ है, तो अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे। फिर इन आयात में सहाबे कराम को एक गिरोह की सूरत में देखिए। क्यों थे बेहतरीन जमात? क्योंकि दीन और ईमान पर अमल करने वाले थे, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करते थे, ईमान से बेखबर लोगों को ईमान की दावत देते थे, अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ करने वाले थे, और अल्लाह से सब्र का बदला पाने वाले थे। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। और आयत 115 को ज़ुबानी याद कर ले। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह ताला का एक झंझोड़ने वाला अंदाज़ है जिसमें दो सवाल हैं। तो यहाँ पे सूरत मोमिनून पूरी हुई, इसका पैगाम क्या था? अपने मकसद हयात को पहचानिए और जन्नत अदन पाने के लिए सहाबा कराम जैसा किरदार अपनाना होगा। सूरत की शुरू में कद अफलहल मोमिनून था, और आप देखें सूरत के एंड के करीब क्या है? ला युफ्लिहुल काफिरून। तो आपकी मेरी चॉइस है, कामयाब हों या नाकाम हों, अल्लाह की रज़ा को पाने के अमल के नुक्ते आखिरी रुकू में से। शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगनी है, नेक अमाल करने, अल्लाह ताला की आयात पर यकीन करना, गुमराही से बचना, अल्लाह ताला से बख्शिश और इसकी रहमत मांगनी है, और अपनी पैदाइश के मकसद को याद रखना है इंशाल्लाह।